ओम शांति। डॉक्टर सत्येश गुप्ता जी हमारे सामने हैं। हम आपका एक हाथ से खूब खूब हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई साहब, आप भारत की राजधानी दिल्ली और ओआरसी से आए हुए भाई बहने हैं। बहुत अच्छी तरह योगपट्टी कर रहे हैं। डॉक्टर सत्येश गुप्ता जी को आप पहचानते ही होंगे, बाबा के प्रिय नूरे रतन है ना? क्यों? क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा बाबा कहते हैं कि आप ऐसा कुछ करो जो गवर्नमेंट तक पहुंच सके और लोगों के अनुभव तक पहुंच सके। तो आपने जो विशेष डेवलप किया है 3D ट्रीटमेंट फॉर हार्ट अटैक्स, तो वो बहुत बहुत सक्सेसफुल है, सफल, प्रैक्टिकली सक्सेसफुल है। तो जिनकी हार्ट आर्टरीज ब्लॉक हो गई होती है वो यहाँ पर आते हैं, 10-15 दिन के शिविर करते हैं और आश्चर्यजनक रूप से चैलेंजिंग है मेडिकल वर्ल्ड को भी, फिजिकल वर्ल्ड को भी, कि वो ओपन हो जाती है। तो उस बहाने बहुत लोग आते हैं यहाँ पर शिविर में और फिर बाबा के रेगुलर स्टूडेंट बन जाते हैं। बनना ही पड़ेगा, कंपल्सरी, आउट ऑफ कंपल्सन भी बनते हैं, पर बनते हैं। तो बहुत अच्छा। इसलिए भाई साहब ने अभी मुझे बताया है कि अभी भाई साहब टीचर्स की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी टीचर्स को भी ये सब बातें पता होनी चाहिए, खुद के लिए और सेवा के लिए भी। तो बहुत अच्छा आपका रोल है। दादी जी के भी आप बहुत नजदीक अंग संग रहे हुए हैं। दादी के अंतिम समय तक भी बहुत नजदीक थे। अगर समय मिले तो भाई साहब अनुभव सुना देना। और आप, आज का विषय है मन मना भाव मध्याजी भाव, ज्ञान का सार है ना, मन मना भाव और मध्याजी भाव। तो अंत में बाबा जो कहते हैं हमारी अंतिम स्टेज यही होनी चाहिए, तो उसके लिए भाई साहब अपने अनुभव के साथ तैयारी करेंगे। आपका ज्ञान के अंदर भी चिंतन करने का एक महावरा है, शौक है, बहुत अच्छा चिंतन करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। हमारे मीठे पापा ने हमको एक संजीवनी बूटी दी। कौन 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 सी? मन मना भाव। तो मन मना भाव का अर्थ क्या है? मन मना भाव क्या है? गीता में भी हम मतलब एक ही जो शब्द जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मन मना भाव है, उसके बाद नष्टो मोह है। मन मना भाव हो तो नष्टो मोह बन सकते हैं, मन मना भाव तो मध्याजी बन सकते हैं। तो कैसे, क्या विधि है और क्या उसकी प्रोसेस है, उसको अगर हम समझेंगे ध्यान से आज। मन मना भाव का अर्थ बेसिकली सिंपल से भाषा में अगर लें तो मन मना भाव का अर्थ है कि अपने मन को हम कहां लगा दें? बाबा में लगा दें। अब मन का अर्थ क्या है? मन में क्या बात है? मन क्या चीज? व्हाट इज माइंड? मन को बाबा में लगा दें, खाली मन सोचने की शक्ति है, कुछ और भी है? मन खाली सोचने की शक्ति है और कुछ और भी है। एक्चुअली मन में अगर आप 31 तारीख की वाणी, 31/12/99 की वाणी अगर बाबा की पढ़े, लास्ट सेंचुरी की लास्ट वाणी है ना, मतलब बाबा ने उसमें थोड़ा सा क्लियर किया है कि मन खाली सोचने की शक्ति नहीं है। मन माना स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। बाबा ने कहा था शुभ संकल्प, ब्राह्मणों के संकल्प कैसे हैं, शुभ होने चाहिए, शुभ भावना, शुभ वृत्ति और शुभ और श्रेष्ठ स्मृति। इन चारों का आपस में कनेक्शन है। अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो मनमना भाव का अर्थ है मेरे संकल्प में भी बाबा हो, भावना में भी बाबा हो, वृत्ति में भी बाबा हो और स्मृति में भी बाबा हो, उसे कहते हैं मनमना भाव, है ना। अगर मेरी स्मृति बाबा में, बाबा मय हो जाए, मेरी स्मृति में बाबा ही बस जाए, तो फिर क्या होगा? हम ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? मध्याजी हो जाएंगे। मध्याजी का मतलब हम कैसे बन जाएंगे? फरिश्ता सो देवता बन जाएंगे, है ना। तो ब्राह्मणों का पुरुषार्थ ही है मनमना भाव। अगर हम ब्राह्मण शब्द को भी समझें तो भी मनमना भाव का अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे हम कहते हैं बाबा ने हमें मनुष्य से ब्राह्मण बनाया, मनुष्य माना मन के वश में है ना, मनुष्य मन के वश में है ना, मन किसके वश में, मन किसके वश में, मन किसके वश में होता है, मन कर्मेंद्रियों के वश में है ना, मन कर्मेंद्रियों के वश में है ना, मन में क्या भरा हुआ है, मन कर्म का कष्ट कर्मेंद्रियों से है, जो आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, मुख से खाते हैं है ना, हाथ पैरों से छूते हैं, तो वो जो है मन में भरा हुआ है राइट। और हम आंखों से क्या देखते हैं, आंखों से क्या देखते हैं, इस देह को देखते हैं, अपनी देह को देखते हैं, दूसरों की देह को देखते हैं, देह के संबंधों को देखते हैं, देह के पदार्थों को देखते हैं है ना, नहीं और क्या देखते हैं, लोग आज दुनिया में सभी कैसे हैं, लोग सभी विकारी हैं, पतित हैं, वो मतलब किसमें किसमें लिप्त हैं, क्रोध कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, काम विकार में ग्रसित हैं है ना, लोभ में ग्रसित हैं, मोह में ग्रसित हैं, अहंकार में ग्रसित हैं ना, उनके बाल बच्चों में ग्रसित हैं ना, आलस्य अलबेलापन बहुत सारी बातें जिनमें वो नेगेटिव में फंसे हुए हैं। तो जब हम मन कर्मेंद्र के वश और मन कर्मेंद्र इसके वश, तो मन में क्या भरा हुआ है, यही सब बातें भरी, क्या भरा हुआ है, देह देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ भरे हुए हैं। तो बाबा कहता है बच्चे मैंने तुम्हें मनुष्य से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण माना ब्राह्मणा बेहद है ना मन, अर्थात जिसकी मन और बुद्धि सदा बेहद में रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण माना जैसे ब्रह्मा कहते ना, ब्रह्मा ब्रह्मा माना ब्राह्मा बेहद की मां, और ब्राह्मण माना जिसका मन सदा कहां रहे, बेहद में रहे है ना, जिसकी बुद्धि कहां रहे, सदा बेहद में रहे। शरीर हद है ना, देह की हद है, देह की हद है कि नहीं, एक दिन पैदा होता है, एक दिन मर जाता है, हद की हद विनाशी होता है और बेहद अविनाशी होता है, ठीक है। तो देह मर जाती है ना, एक दिन पैदा होती है, एक दिन मर जाती है, देह के संबंध हद है कि बेहद है, देह के संबंध हद है बेहद है, हद है, देह के पदार्थ हद है के बेहद है, हद है, और देह का स्वभाव, देह का स्वभाव क्या है, देह की नेचर क्या है, आग की नेचर क्या होती है, आग की नेचर क्या होती है, आग का स्वभाव जलाना गर्मी है ना, और पानी की नेचर क्या होती है, ठंडक। तो ऐसे ही देह का जो स्वभाव है वो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, देहबान आया, देहबान आते ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है, ठीक है। देह का स्वभाव है, नेचर है, देह को देखते ही देह की तरफ आकर्षण होता है, देखिए विचार चलते हैं, यही काम विकार है ना, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा ना? और देह का पदार्थ क्या है, देह का संस्कार आदत क्या है, देहबान की आदत क्या है, देहबान आते ही क्या आएगा, आलस्य आएगा है ना, क्या आएगा, नहीं आएगा आलस्य, अपने को देहबान आते ही क्या आएगा, आलस आएगा, नहीं रात को तो हम थोड़ा कम सोए, नींद अच्छी नहीं आई, पीछे को जाके बैठ जाते हैं, तो बीच में मौका लगेगा सो जाएंगे है ना, बेभान आते ही आलस आएगा, थकावट की फीलिंग आएगी, अलबेलापन आएगा, अभी नोट कर लेते हैं, बाद में ध्यान, बाद में इस पे मेडिटेशन करेंगे है ना, बाद में कर लेंगे है ना, दूसरों में दोष निकालेंगे, अपने दोष दिखाई नहीं देंगे। देहभान वाला व्यक्ति बगले के माफिक होता है, बगला क्या करता है, उसके सामने अगर 99 अगर मोती पड़े हो और एक कीड़ा पड़ा हो तो उसको क्या दिखाई देता है, कीड़ा। तो देहमान वाला व्यक्ति क्या करता है, उसको सामने वाले में 99 गुण हो कि तू एक अवगुण हो तो उसको अवगुण दिखाई देता है, राइट, उसको क्या दिखाई देगा, अवगुण। तो देहमान वाले की आदत होती है दूसरों में दोष देखना, दूसरों में बुराई देखना, और देहमान वाले की आदत होती है बदला लेने की भावना, देहमान वाले की आदत होती है शक करना, देहभान वाले की आदत होती है अनुमान लगाना, और देहभान वाले की आदत है चिंता करना, डरना, देहभान वाले की आदत होती है जल्दीबाजी करना, देहभान वाले की आदत होती है ईर्ष्या करना, राइट। तो ये चार बातें, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, ये हद है, और मनुष्य की बुद्धि इन्हीं चार बातों में लगी रहती है, और ब्राह्मण उनकी बुद्धि सदा बेहद में रहती है, मन बेहद में रहता है। बेहद क्या है, जो मनमना भाव की डेफिनेशन है ना परिभाषा, उसमें ये बात आती है, जिसका ब्राह्मण में इसका मन सदा बेहद में रहे, अर्थात बेहद क्या है, आत्मा हृदय बेहद है, कितनी छोटी है और एक सेकंड में कहां से कहां, है ना, है ना, एक सेकंड से कम समय में कहां से कहां पहुंच जाती है, कितनी पावर है आत्मा में, 84 जन्मों का पार्ट है और एक जन्म ही देखो कितना कितना विस्तार है, एक जन्म अगर आपका अपना जन्म देख लो, 60 साल के आप हो गए, 50 के हो गए, 40 के हो गए, 30 के हुए, कितनी बातें बीत गई हैं, वो सब कहां थी, आत्मा में रिकॉर्ड थी, है ना, वो फाइल खुलती जा रही है, एक ही जन्म की फाइल कितनी लंबी है देखो जरा आप, कितने जीबी की फाइल होगी बताओ, कितने टेराबाइट की फाइल होगी, 100 टेराबाइट, एक ही दिन में 100 टेराबाइट खर्च हो जाता है, हाँ क्या कह रहे जीबी नहीं मतलब टेराबाइट, टेराबाइट में तो टेराबाइट की तो बहुत बड़ी होती, टेराबाइट की बात कर रहा हूं, हाँ काफी बड़ी होती, तो कितनी फाइलें, मतलब कितना जबरदस्त हमारी फाइल, कितनी बेहद है, सोचो कोई फाइल ऐसी, कोई ऐसी चिप हो सकती है क्या, कोई ऐसी चिप हो सकती है इसमें इतना प्रोग्राम भरा हो और एक्यूरेट घिसे भी नहीं, खराब भी नहीं हो, है ना, पानी भी लग जाए तो भी खराब ना हो, कुछ भी हो जाए खराब ना हो, कितनी वायरस तो आ गया, वायरस तो है तभी तो प्रॉब्लम हो रही है, यही तो वायरस है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो वायरस है, ये देहभान तो वायरस है ना, इसी कारण तो गड़बड़ हो गई, तभी तो भगवान को आना पड़ा एंटीवायरस डालने के लिए ना, ये मनमना भव भी एंटीवायरस है, ये एंटीवायरस प्रोग्राम है मनमना भव, है ना, जो भगवान को डालना पड़ता है ना आकर के, तो ये जो है आत्मा बेहद है ना, परमात्मा हृदय बेहद है, बेहद है आत्मा परमात्मा के संबंध हृदय के बेहद है, हर संबंध है, मान लीजिए आपका कोई कोई आदमी है मतलब पति है किसी का, वो पति को अपनी लेडी अपने पति को अपना बाप कह सकती है, बेटा कह सकती है, कह सकती है, भाई कह सकती है, एक ही संबंध हो सकते हैं, किंतु बाप से हमारे कितने संबंध है, कोई भी संबंध निभाओ कहां भी निभाओ, ऐसा ऑल इन वन है वो, उसको मतलब कोई भी संबंध से उसको याद करो अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, हर समय अवेलेबल है, हर संबंध से अवेलेबल है, तो इतने संबंध हमारा बेहद संबंध उसके साथ हो सकता है, राइट, और फिर ये ड्रामा संसार रूपी ड्रामा हृदय बेहद है, बेहद है, तो ये चार चीजें बेहद है, मतलब मैं इसको हमेशा कहता हूं ABCD, है ना, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन मतलब संबंध, और डी फॉर ड्रामा, तो ब्राह्मण माना ही जिसका मन सदा ABCD में रहे, बेहद में रहे, और मेडिटेशन क्या चीज है, व्हाट इज मेडिटेशन, राजयोग का मेडिटेशन क्या है, राजयोग का मेडिटेशन है बीइंग द ट्रूथ, सत्य सत्य बनना ही राजयोग का मेडिटेशन, लिविंग द ट्रूथ, सत्य को जीना ही राजयोग का मेडिटेशन है, सत्य रियलाइजिंग द ट्रूथ, सत्य अनुभव करते रहना ही राजयोग का मेडिटेशन है, और सत्य क्या है, ट्रूथ क्या है, ट्रूथ क्या है, सत्य की दो, सत्य में दो बातें होती हैं, सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य सदा ही है, सत्य सदा एटर्नल है, एटर्निटी है, सत्य एटर्निटी में सत्य ट्रूथ जो सदा ही है, कभी खत्म नहीं होता है, सदा है, और दूसरी बात है सत्य, सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है, सत्य सदा एक जैसा ही रहता है, देह परिवर्तन होती है, देह मरती है पैदा होती है, आत्मा सत्य सत्य है सदा ही है, परमात्मा सदा ही है, आत्मा परमात्मा के संबंध सदा ही है, और डी ड्रामा सदा ही है, कर्म कर्म सत्य है, ड्रामा में भी कर्म सत्य है, मैंने कोई कर्म कर लिया और कर्म का फल ना मिले हो ही नहीं सकता है, राइट, मैंने कोई कितना भी आप योग लगा लो, कितना भी योग लगाओ कर्म का फल मिलेगा, भगवान भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, मैंने किसी को पाप कोई पाप किया, गाली दी किसी ग्रानी की, इंसल्ट की, तो क्या होगा, मैं राजयोग शुरू कर दिया, दिन रात योग करता हूं तो मेरे को इंसल्ट नहीं होगी क्या, हाँ बोलो बहने बताओ, इंसल्ट होगी नहीं होगी, भाई बताओ, हाँ और कोई बोले, कोई भी कर्म सत्य माना मुझे उसका फल मिलने ही वाला है, चाहे कितने भी योग लगाऊं। हाँ, कर्म का जो हाँ नहीं ज्यादा मत, कर्म जो है मूलधन तो मिलेगा ही, ठीक है, मूलधन तो मिलेगा, सिर्फ ब्याज माफ हो जाएगा। योग लगाने से क्या माफ होता है? ब्याज माफ होता है ना। ब्याज कितना होता है? नहीं, ब्याज नहीं, वो संगम पे सोगना नहीं। मान लो 100 साल पहले मैंने कोई पाप किया था तो कितना हो जाएगा 100 साल के बाद, है ना। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, मैंने वैसे कहीं इसका हिसाब लगाया था। आपने 100 साल पहले किसी 10 रुपए उधार लिया था और 100 साल के बाद वो व्यक्ति आपका बच्चा बन के आ गया या आपका युगल बन के आ गया, ठीक है, या आपका दोस्त बिजनेस पार्टनर बन के आ गया। अब वो कहेगा मेरा 10 रुपया वापिस करो और साथ में ब्याज, तो ब्याज कितना बनेगा पता है आपको? आप हिसाब लगा ना, 5,98,00,000 रुपया बनता है ब्याज इसका, ठीक है। सुनो, मैं बता देता, चलो मैं आपको ये वैसे मैं बात रखना नहीं चाहता, फिर मैं रख दी, क्योंकि ये बहुत ब्राह्मणों को बहुत कंफ्यूजन होता है ना। ब्राह्मण सोचते हैं हम राजयोग करें तो हमें सब कुछ हमारा हो जाए, काम पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो 1917 से लेकर 1947 तक 3 साल में पैसा डबल होता था, 1947 से 67 तक 4 साल में पैसा डबल होता था, पुराने लोगों को पता होगा, है ना। और 67 से 87 तक 5 साल में पैसा डबल होता था, और फिर 87 से लेकर अभी तक 2017 तक 7 या 8 साल में पैसा डबल होता है ना। अब उसके हिसाब से लगा के देखो, सिर्फ डबल करके देखते जाओ, तो 5,98,00,000 रुपया बनेगा। तो आपको 10 रुपया कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा ना, ऐसा गीत होता है ना एक। तो 100 साल कहते रिश्ते चलते हैं ना, 100 साल के रिश्ते, मतलब पिछले जन्म में आज जो हमारे साथ हैं, जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन है, पति पत्नी है, भाई बच्चे हैं, दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर है, पिछले जन्म का संबंध है ना, इसी कारण इस जन्म में हम साथ साथ आए, और वो हमसे आकर के लेते हैं, हमें उनको देना होता है। और आज के जमाने में देखो संतुष्ट होता है कोई? संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने उनके लिए इतना करते हैं तो भी वो खुश क्यों नहीं होते? हमने 1 करोड़ खर्च कर दिया तो भी बाकी कितना बचा 10 रुपए का? 4 करोड़ तो बचा ना, 4,98,00,000 रुपए बचा, और उसमें नाक ऊपर नीचे की नखरा दिखाया या क्वेश्चन किया तो क्या होगा? और ब्याज बढ़ जाता है ना। तो मतलब हमें इतना सहन करना पड़ता है ना। अगर हमने एक बार इंसर्ट किया तो कितनी बार इंसर्ट होगी बोलो? एक बार इंसर्ट किया हो किसी की 100 साल पहले, कितनी इंसर्ट होगी? अभी बहुत होगी ना, सुबह शाम होगी ना, 5 करोड़ बार नहीं होगी। मतलब मैं तो उसके एग्जाम्पल दिया आपको ना, कि मतलब कितनी बार होगी। तो आप इस समय ये समय है, और राजयोग से ये 5,98,00,000 रुपए माफ हो सकता है, 10 रुपए देना ही पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल देखो, हमारे बड़े बड़े भी हैं, कितने भी बड़े बड़े हमारे सामने सभी दादियां हैं, हमारे बड़े सीनियर्स हैं, उनको भी अगर वो बहुत कितना योगी है, कितना तपस्वी है, किंतु उनको भी उनके कर्म भोग आते हैं, शरीर में बीमारियां आती हैं। अगर वो बहुत योग करते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, फिर तो वो तो आएगा, है ना, किंतु ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो सूली भी कांटा हो जाती और वो हमारे अनुभव बन जाता, तूफान भी तोहफा बन जाता है, राइट। इस तरह से हमें फायदा होता है राजयोग का। राजयोग पूरा करो तो 5,98,00,000 माफ हो गया, आधा किया तो कितना माफ हुआ? कितना माफ हुआ? 2,99,00,000 माफ हुआ, 2,99,00,000 फिर भी देना पड़ेगा, है ना। तो गिनती तो करना पड़ेगा ना, हिसाब किताब। अगर हमने 75% भी फॉलो किया तो भी कितना हो गया? तो भी 1.5 करोड़ तो लगभग देना पड़े, नहीं देना पड़े। तो हमें बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा कि राजयोग जैसे बताया, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन, और सोने के पहले हर हिसाब किताब बाबा को देके सोना। दादी बड़ी दादी थी ना, जैसे दीदी ने कहा मेरे को, बड़ी दादी के साथ का अनुभव बताओ। मैं बड़ी दादी के पास मुझे रोज जाना होता था, रोज मतलब मुरली के रोज बाद मेरा मस्त था। दादी ने ऐसे बोला हुआ था, मुझे मुरली के बाद जरूर आके मिलो, चाहे 5 मिनट के लिए आओ, 2 मिनट के लिए आओ, है ना। तो मैं रोज दादी के पास जाता। दादी जब यूजली कई बार अकेली बैठी होती, कई बार कोई साथ में होता था। दादी जब अकेली होती थी मुझसे कुछ ना कुछ कह देती, कुछ ना कुछ कहती थी। एक दिन दादी ने कहा, अच्छा गुप्ता जी बताओ ये जो अष्टतन कौन बनते हैं। मैंने कहा दादी मुझे तो पता नहीं। नहीं आप मुरली बहुत पढ़ते हो ना तो आपको पता होगा, बताओ। मैंने कहा दादी आप बताओ। तो दादी कहते जो श्वासों श्वास बाबा और बाबा की मुरली में मुरली को याद करते हैं वो अष्टतन बनते हैं। जो श्वासों श्वास बाबा और बाबा की मुरली जिन्हें याद रहती है, जिनके अंदर मुरली बजती रहती है हमेशा ही, बाबा की मुरली जैसे आज की मुरली थी, है ना, बाप समान मीठा बनना है, तो ऐसे बाबा की मुरली अंदर बजती रहेगी। आज का वरदान अंदर बजता रहेगा, है ना। ब्रह्मा बाबा के संस्कार है ना, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अंदर बजेगा, है ना, बजता रहेगा अंदर कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे बाबा के बाबा जैसा बनना है, मुझे बाबा का लास्ट के जैसे निराकारी स्टेज बनानी, निर्विकारी बनना, निरहंकारी बनना, अंदर बजता रहेगा हमेशा। सामने दिखाई देगा मुझे बाबा, ब्रह्मा बाबा दिखाई देगा, हर बात में बाबा दिखाई देगा। बाबा का जैसे एक्सप्रेशन था वो बुद्धि में घूमेगा, है ना, मुझे अपना दान कहां करना है, कैसे करना है। आज का गेट बुद्धि में डूबे मतलब घूमता बजता रहेगा, अपने आप ही बजता रहेगा। जैसे दादियों को आप प्रैक्टिकली देखो, आज दादी जानकी को देखो, आज भी देखो तो क्या होएगा, जब जाओगे उनके पास मुरली उनके अंदर बजती रहेगी, है ना। और कोई बात करेगी नहीं, मुरली के अलावा कोई बातें नहीं करेगी, बाबा के अलावा कोई बातें नहीं करेगी, है ना, दुनियादारी कोई बात नहीं करेंगे, है ना। तो अष्टतन बनने का फिर दादी कहते अच्छा जो 108वीं माला में आएंगे उनका बताओ। मतलब वैसे अगर हम देखें, हम एक दिन में 16,000 बार सांस लेते हैं, एक दिन में, दिन में एक मिनट में 14 बार और रात में 10 बार, टोटल सांस देखें 16,000 सांस होते हैं एक दिन में। अगर आप गिन के देखना 16,000 सांस हम लेते हैं लगभग। तो मतलब 16,000 बार बाबा याद आना चाहिए एक बार अगर अष्टतन बनना है तो, है ठीक है, इतनी बार आपको मुरली अंदर बजनी चाहिए। और अगर आपको 100 की माला में आना है, 108 की माला में, तो दिन में 100 बार मुरली अंदर याद आनी चाहिए, बाबा और बाबा की मुरली। 16 घंटे हम लगभग जागते हैं तो मतलब हर घंटे में 6 बार आना याद आना चाहिए बाबा। कितनी बार याद आना चाहिए? बाबा और बाबा की मुरली। और अगर 16,108 की माला में आना है तो कम से कम 8 बार, 3 पहर होते हैं ना 8 दिन में, एक दिन में 8 पैर होते हैं, तो कम से कम 8 बार मुरली याद आनी चाहिए बाबा की, या उसे बार बार पढ़ना चाहिए, है ना। सारी मुरली तो कम से एक एक लाइन तो पढ़नी चाहिए बाबा की, ठीक है। और एक अगर सत्युग में पहली प्रजा में 9 लाख में आना तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कम से कम एक बार सुबह 7 से 8 की मुरली, 7 से 8 में मुरली होती है ना क्लास में, उसमें आना चाहिए। अगर उस मुरली में 1 घंटा लेट, 7 बजे में 8 बजे आए तो 1 जन्म लेट सत्युग में, ये बाबा ने मुरली में बताया हुआ है। मैं ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कहो तो पेज नंबर बताऊं, मुरली का साल बताऊं, है ना। एक घंटा लेट तो 1 जन्म लेट, 2 घंटा लेट तो 2 जन्म लेट, 3 घंटा लेट तो 11 बजे मुरली सुनने आए तो शाम को सीधा तो 12 घंटा लेट, 12 घंटा लेट माना 12 जन्म लेट, है ना, ठीक है। देखो हमारे जीवन में सुनो, मनमाना भाव का अर्थ ही क्या है, हमारे जीवन में बाबा टॉप प्रायोरिटी है कि कौन टॉप प्रायोरिटी है? तो लेट हो गए ना वो तो, हाँ त्रेता बीच में आएंगे, बीच में आएंगे, है जी, हाँ यही तो है। सारे तोड़ के आना पड़ता ना, कर्म बंधन तोड़ के, मुझे बाबा की लगन है, मैं कैसे भी करके चोरी छिपा के कैसे भी करके कैसे भी बाबा के सेंटर में पहुंच जाऊं और पहुंच के मुरली सुनूं, ये लगन होनी चाहिए। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैं जब मैं एमडी कर रहा था तो एमडी करने समय अब तक कितना प्रेशर होता है, एमडी मेडिसिन करने कितना प्रेशर होता है, किंतु मैंने कभी मिस नहीं किया मुरली एक दिन भी ना। मेरा एमडी का एग्जाम था उस दिन भी मैंने मिस नहीं की, प्रैक्टिकल एग्जाम भी था, थ्योरी एग्जाम मैंने कभी मिस नहीं की, हमने कभी मिस नहीं की, मेरा एग्जाम वाले दिन भी मिस नहीं किया। तो मतलब मुरली का लगन होनी चाहिए, बस 4 से 5 योग किया, खाना बनाया, खाना बना के, और फिर हम, और बच्चा भी था हमारा तो छोटा बच्चा था ना, तीन साल का था तो उसको स्कूल छोड़ते थे, उसका खाना तैयार कर स्कूल छोड़ा, पौने सात स्कूल छोड़ा, उस वहां सेंटर गए, सेंटर जाके आठ बजे वहां से आए, आके खाना सुबह बना हुआ है, दो चपाती खाई और 8:30 अस्पताल भाग गए और एक दिन भी मिस नहीं किया। और भगवान ने कभी ये ऐसे ही मेरी परीक्षा नहीं है कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट केस आ गया हो, हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई, मेरे को बहुत प्रोटेक्शन दी पूरी एमडी में। तो लगन होनी चाहिए, जहां लगन है वहां, जहां चाह है वहां रहा है, राइट। तो अगर हमें करना है तो हमें करना, हमें सेंटर पे आके मुरली, मोबाइल पे मुरली सुनने वाले मोबाइल से देखेंगे सरफ को ना, टीवी पे देखने वाले भी टीवी पे देखेंगे मुरली सरफ को, है ना। मैं ये बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी किंतु सच्ची बात है ना। हमारा जो वायवरिश जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में जाके मुरली सुनने का है ना, जहां रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्डिंग कहां करोगे आप, डबिंग कहां होती है, साउंड प्रूफ रूम में होती है ना। जो वायुमंडल है, आप घर में बैठ के मुरली पढ़ रहे हो, इधर से बच्चे की आवाज आती है, इधर से किसी की आवाज आती है, इधर से कोई कान खींचता है, उधर से कोई कान खींचता है, उधर से किसी का टेलीफोन आ जाता है, तो मुरली सुनी क्या अंदर, गई क्या मुरली अंदर, मुरली मेरे कर्मों में आई क्या, कर्मों में नहीं आती है। तो सेंटर पे जाके मुरली सुनना, तब 9 लाख की माला में आएंगे, ठीक है। वो भी फर्स्ट क्लास पर, रॉयल प्रजा होती है वो भी ना, ठीक है। अटेंशन है इस बात पर रहेगा ना, इस पे भले बात ऐसे थोड़ी सी कड़वी है ना। हाँ जी, भले हिसाब किताब हो, नहीं नहीं, हमें प्रायोरिटी देनी होगी। सपोज आप शाम को भी मुरली सुनते हैं तो सुबह सुबह नहा दो के, हमारे तो दिल वाले आते हैं ना, हम उनको बताते हैं, इनकी कई की ड्यूटी सुबह 7 बजे शुरू होती है, 6 बजे शुरू होती है, तो वो क्या करते हैं, शाम को जा सेंटर में मुरली सुनेंगे, पर सुबह सुबह नहा दो के वही मुरली फिर दोबारा पढ़ेंगे और उसके बाद कार्य व्यवहार में आएंगे और उसमें बिल्कुल एकांत में बैठ के मुरली पढ़ेंगे। मतलब टॉप प्रायोरिटी जिसकी बाबा है लाइफ में वो सत्युग में आएगा, ठीक है। और श्वासोश्वास जिनको बाबा याद है, मतलब इसके लगन ये होनी चाहिए। तो बेहद का मन, ब्राह्मण माना बेहद का मन, जिसकी बुद्धि सदा बेहद में, मतलब आत्मा में, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, देह का चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बंधु आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा शिव के संतान हूं, और एक एक संबंध की अनुभूति, बहुत गहराई से एक एक संबंध की अनुभूति, मुख्य 9 संबंध की गहरी अनुभूति, बाकी तो संबंध सभी संबंध निभा सकते हो, एक मां के संबंध की अनुभूति, बाप के संबंध की अनुभूति, टीचर के संबंध की अनुभूति और सतगुरु के संबंध की अनुभूति, बंधु बड़ा भाई के संबंध की अनुभूति, सखा दोस्त के संबंध की अनुभूति, साजन के संबंध की अनुभूति और सर्जन के संबंध की अनुभूति और बच्चे के संबंध की अनुभूति, है ना। ये 9 संबंध तो बहुत गहरे अनुभव होने चाहिए, यही योग है। और फिर D4 ड्रामा, संसार रूपी नाटक, ये संसार रूपी नाटक एक ड्रामा है ना, इस ड्रामा में हम आत्माएं एक्टर हैं और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और परमात्मा इस ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है, क्या हुआ है अभी तक जो कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है, किसी ने गाली दी, अच्छा हुआ बुरा हुआ, इंसल्ट की, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बीमारी आई, अच्छा हुआ बुरा हुआ, इस ड्रामा में दोषी कोई नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो 90% थॉट्स जो आते हैं ना, वो पास से आते हैं, भविष्य से आते हैं। उस 90% में से भी 80% तो पास से ही आ रहे हैं। और यहां हम सारे फंसे हुए हैं। हमने अपने आप को चेक करके देखो, क्या मेरा भविष्य पास्ट में दिल जाता है क्या, बार बार पास्ट में मेरी बुद्धि जाती है क्या, मेरे को कोई बात की याद आती, इसने मेरे ऐसा किया, ऐसा हुआ नहीं। ये जो है, यही ये सबसे बड़ी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ। किसी ने मेरी इंसल्ट की, क्यों की, क्योंकि मैंने उसकी इंसल्ट की थी पहले, अब उसने कर्मों के हिसाब किताब में ना मुझे ब्याज के साथ मेरी इंसल्ट की है, और अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बाकी है ना, और भी भविष्य में होने वाली है ना, ठीक है। किसी ने गलत नहीं किया है, कोई भी, किसने कुछ भी किया मेरे साथ, किसी ने 5 लाख रुपए वापस नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि मैंने उसका उससे पैसे लेके उसको वापस नहीं दिए थे, इसलिए उसने मुझे वापस लिए, उसने वापस लेके चुप हो गया है, उसने वापस बोलता भी नहीं है, है ना। जैसे किसी का अगर हम ईएमआई देते हैं बैंक में, तो ईएमआई देने के बाद वो थैंक्स नहीं बोलता, बैंक मैनेजर बोलता है थैंक्स क्या। तो ऐसे वो जिसको आप दो, जिसने खा लिए पैसे आपके, वापस थैंक्स नहीं बोलता कि बहुत धन्यवाद आपने 5 लाख मैंने ले लिया आपसे, थैंक्स धन्यवाद, ऐसे नहीं बोलेगा। और ही कहेगा 5 लाख बाकी है दे दो वो भी, है ना। ठीक, तो मतलब ये हमको समझना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है सबसे अच्छा होने वाला है। तो ये जो हमने एबीसीडी है, ये ज्ञान है, ये मुरली है बाबा की, इस मुरली का बार बार मनन चिंतन मंथन सिमरण करना, जितना इसको हम गहराई से मनन रिवाइज करना, चिंतन माना गहराई में जाना, मंथन माना इसका जूस निकालो, है ना, और ज्यादा उसमें खो जाओ, साथ में बाबा कंबाइन कर लो, फिर बाबा से पूछो बाबा इसका अर्थ क्या है, उसका बाबा अर्थ बताएगा। जब बाबा से खो जाओगे तो बाबा उसका रियल अर्थ बताएगा, बाबा इस महावाक्य में आपका क्या मतलब है, मेरे लिए क्या उसका अर्थ है बाबा बताएगा। फिर जो मक्खन निकले उसको कार्य में लगाओ, कार्य करते समय तो उसको याद रखो कि मुझे इस तरह से कार्य करना है, वो फिर अंदर रिकॉर्ड होगा, ये नया संस्कार बन जाएगा, ये ऐसे नए संस्कार बनेंगे, है ना। फिर नई रिकॉर्डिंग, जो पुराने संस्कार फिर दबते जाएंगे, नए संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। तो अगर हम इसको दूसरे रूप में कहें, विचार संकल्प, जो बाबा ने हमें संकल्प दिया मुरली में, हमारे जो संकल्प है उनको हम गहराई से, संकल्प और भावना में क्या फर्क है, संकल्प जब इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस, कोई भी विचार को हम गहराई से करते हैं ना, बहुत गहराई से इंटेंसली करते हैं, तो भावना में परिवर्तन हो जाता है। अब बाबा ने जैसे आज की मुरली में कहा बाप समान मीठा बनो, कहा ना आज, अगर श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। अब इस बात को बार बार बुद्धि में, ये विचार है, एक विचार है ये, इसको हम बार बार गहराई में इसके जाएं, श्रेष्ठ मत, बाबा की मत श्रेष्ठ है, यूनिक है, उसको हम उस पर चलेंगे माना श्वासों श्वास, है ना, हर कर्म करते हुए हम इसमें चलेंगे तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। श्रेष्ठ माना हमारा पद क्या हो जाएगा, हम फरिश्ता बन जाएंगे। अभी का श्रेष्ठ पद क्या है, फरिश्ता, संगम का श्रेष्ठ पद फरिश्ता है, सत्युग में देवता है। तो फरिश्ता माना क्या, फरिश्ता माना सूक्ष्म शरीर, क्या है सूक्ष्म का क्या अर्थ है, सूक्ष्म शरीर का अर्थ क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या चीज, किसी का बनता है, लाइट और माइट का, सूक्ष्म शरीर वैसे है क्या, मन बुद्धि संस्कार ही सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं ना, मन बुद्धि और संस्कार। अगर मेरी मन बुद्धि संस्कार पवित्र हो गया तो ये सूक्ष्म शरीर है, मन की शेप वही है जो इस स्थूल शरीर की शेप है, मन हमारा हर एक एक सेल में गया हुआ है, स्मृति में एक चीज रिकॉर्ड है ना, मन पूरा पूरी बॉडी में है ना, बुद्धि यहां है, संस्कार कर्मेंद्रियों में है, और मन हमारा पूरी एक एक सेल में गया हुआ है। एक सूखी ब्रेड लो, एक प्लेट में दूध लो, सूखी ब्रेड को प्लेट में रख दो, दूध कहां गया, कहां गया, ब्रेड के अंदर गया। अब दूध की शेप क्या है, जो ब्रेड की शेप है। तो ऐसे ही हमारा मन है, है ना, हमारे विचार, हमारी भावना, हमारे संकल्प भावना और वृत्ति और स्मृति ऐसे है, दूध के समान है ना, कि तो जैसे वो ब्रेड के साथ, ब्रेड में उस रोम रोम में समाई है। मन में हमारा हार्ट भी है, हार्ट की आर्टरीज भी है ना, लीवर भी है, आंते भी हैं, है ना, लंग्स भी है, आंखें भी है, नाक भी, कान भी, सब कुछ है उसके, सब कुछ है जी। मन आत्मा की शक्ति है ना, ऑर्गन नहीं, शक्ति है ना, सूक्ष्म शक्ति है ना। तो मन जो है सारे शरीर में, आत्मा यहां है, और उससे बुद्धि, उसके बुद्धि आसपास ही है, बुद्धि माना सात सात जो हमारी एनर्जी है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियां, ये बुद्धि है, ये मतलब बेसिकली ये कॉन्शियसनेस है, और उससे जो है हमारी, उससे बुद्धि जो है, बुद्धि से जो हमारे, उसके बाहर जो जो है ना, जो हमारे स्मृतियां हैं, स्मृति है, वृत्ति है, भावना और संकल्प, वो सारे शरीर में फैले हुए, राइट, वो सारा शरीर में है, और यही हमारा मन है, मन ही सूक्ष्म शरीर है। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रेंक, मन भी, मन ही सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर माना, अगर हम कहते हैं फरिश्ता शरीर, फरिश्ता माना 100% पॉजिटिव टीम, टीम माना, टीम टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड माना वृत्ति, और एम फॉर मेमोरीज माना स्मृति। तो मेरे जब मन 100% पवित्र हो जाता है, बुद्धि एकदम सत्व प्रधान हो, सातों गुणों से भर जाती है, संस्कार सत्व प्रधान बन जाते हैं, तो मेरा सूक्ष्म शरीर क्या बन जाता है, फरिश्ता शरीर बन जाता है, राइट। तो मन जो है, ये मन ही, मन पे ही ये सूक्ष्म शरीर का मतलब है पवित्र बुद्धि पवित्र मन, ठीक है। संस्कार तो बना रहे हैं हम, अभी संस्कार बनाने में टाइम लगेगा। ब्रह्मा बाबा जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, तो उन्होंने आते ही ब्रह्मा का पुरुषार्थ पहले से था, तो ब्रह्मा का बुद्धि और मन तो पवित्र हो गया पहले ही, पहले दिन से, क्योंकि बाबा ने, बाबा बुद्धि में आके बैठ, दिल में आके बैठ गया शिव बाबा, तो सत्व प्रदान हो गया, और मन को, मन में लक्ष्य दे दिया, तुमको ये नारायण बनना है, तुमको ये दुनिया बनानी है, नई दुनिया बनानी, तो मन को लक्ष्य मिल गया ना। तो बाबा का तो पहले दिन से ही क्या बन गया, बुद्धि और मन पवित्र हो गया। फिर बाबा ने 33 साल संस्कार को, संस्कारों को पवित्र बनाया, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बनाया, और 33 साल में बनाने के बाद बाबा सूक्ष्म वतन में जाके बैठ गए। अब सूक्ष्म वतन क्या चीज है, सूक्ष्म वतन क्या, कोई फिजिकल स्थान है क्या, सूर्य चांद तारों के पास जाओ तो सूक्ष्म वतन आ जाएगा, ऐसे है क्या, क्या है सूक्ष्म वतन बोलो, संकल्पों की रचना है, किसकी, किसके संकल्पों की रचना है। जब शिव बाबा आते हैं पहले पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, और फिर ब्रह्मा के तन में आते हैं, और शिव बाबा ने, अब देखो इस क्वेश्चन की इसको गहराई में समझो, बाबा ने खूब पुरुषार्थ किया, बाबा ने मनमना अपने मन को बाबा में लगा दिया, लक्ष्य जो बाबा को दिया था, ब्रह्मा बाबा को लक्ष्य, बाबा ने क्या दिया, तुमको नारायण बनना है, तुमको मिचनू बनना है, श्री कृष्ण बनना है, तुमको सत्युग बनाना है, तो बाबा का लक्ष्य क्या हो गया, उसके मन में क्या बस गया, लक्ष्य स्वर्ग बस गया ना, नारायण बस गया, तो बाबा के मन में ये लक्ष्य हो गया ना, तो बाबा ने क्या किया, अपने संस्कार, संस्कारों क्या बनाया, नारायण के समान बनाया। अच्छा विष्णु का मतलब क्या है, नारायण का मतलब क्या है, नारायण का मतलब है सत्युग में हम क्या लेके जाते हैं, संस्कार लेके जाते हैं, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान संस्कार ही विष्णु है, विष्णु माना जिसमें विष का एक भी अणु ना हो, जिस प्रवृत्ति में विष माना पांचों विकारों का एक भी अणु ना हो, अंश भी ना हो, मतलब ठीक है, जिस प्रवृत्ति में लक्ष्मी नारायण में दोनों में एक भी किसी भी विष का अणु भी नहीं है, एक भी अंश भी नहीं है, राइट। ऐसी प्रवृत्ति घर और घर मतलब घर में लक्ष्मी नारायण पति पत्नी में ऐसी प्रवृत्ति है ना, जहां पे अंश भी ना हो। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने अपने आप को, मन पहले सत्व प्रधान बन चुका था, बुद्धि सत्व प्रधान बन चुकी थी, संस्कारों को बनाया, तो बाबा कहां जाके बैठ गए, आपने बार बार बाबा, 3 साल से बाबा की मुरली सुन रहे हैं, नई मुरलियां, बाबा क्या कह रहा है, बाबा के दिल में कौन, बच्चे, और बच्चों के दिल में कौन, मेरा बाबा, राइट। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गया, तो बाबा कहां जाके बैठा, बाबा के दिल में जाके बैठ गया, शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया, और शिव बाबा का दिल ही क्या है, सूक्ष्म वतन है, ठीक है, शिव बाबा का दिल तक थी सूक्ष्म वतन है, और कुछ सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का अर्थ क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, एक मां जो होती है ना, मां, मां के दिल में क्या होता है, बच्चे का कौन सा रूप होता है, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका रूप होता है, वो भी होता है, पेट में होता तो भी होता है, उसका वो भी रूप होता है ना, कि बच्चा मेरा ऐसा है, और जब पैदा होता है तो वो भी रूप होता है, फिर जो थोड़ा बड़ा होता है वो वाला रूप भी, सत्व प्रधान स्वरूप भी है, थोड़ा और बड़ा हुआ जिद्दी हो गया, चंचल हो गया, वो रूप भी है, और फिर अभी कैसा हो गया, विकारी हो गया, वो रूप भी है। किंतु जब भी मां देखती है उसको कौन सा बच्चा याद आता है, छोटा वाला। इसलिए बाबा हमको जब देखता है बाबा को क्या याद आता है, छोटा वाला, सत्व प्रधान स्वरूप याद आता है, देवी देवता स्वरूप याद आता है। तो देवताओं को और फरिश्ता, अभी हम फरिश्ता बन रहे हैं, अपनी बुद्धि और मन को पवित्र बना रहे हैं, तो अब वो देवता स्वरूप और सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप का और देवता स्वरूप का वहां जाके बाबा के दिल में जाके मिलन होता है। सूक्ष्म वतन को स्थूल नहीं है, है ना, स्थूल नहीं है, एक सूक्ष्म वतन है जिसमें सिर्फ पवित्रता ही पवित्रता है, शुद्ध संकल्पों की कारोबार है, और बाबा जिसकी तार खींचना चाहे तार खींच लेता है, अपने दिल में, किंतु इसके लिए पुरुषार्थ ये करना है कि मुझे अपनी मन बुद्धि को पवित्र बनाना है। तो मन मन अभाव का अर्थ क्या है? अपनी बुद्धि को किसमें रखो? सदा बेहद में रखो। ए ए बी सी डी है ना, चलते फिरते उठते बैठते यही मुझे जीना है, यही मुझे अनुभव करते रहे, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा मेरे साथ है, और एक एक संबंध से बाबा को अनुभव करो। और डी फॉर ड्रामा, संसार में ये ड्रामा, आपका घर, घर क्या है, घर में क्या हो रहा है? ड्रामा हो रहा है, ठीक है। ड्रामा में कौन है? एक्टर है। एक्टर में कौन? ड्रामा में क्या, महाभारत क्या है? ड्रामा है ना। और रामायण क्या है? ड्रामा है। उसमें कौन कौन है? रामायण में कौन कौन है? राम, सीता, हनुमान, कौशल्या, केकई, मंथरा है ना, उधर रावण, रावण के साथ रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, शूर्पणखा है ना, मंदोदरी। किंतु हमारे हमारे घर में क्या प्रॉब्लम होती है? हमारे घर में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे घर में थोड़ी देर में जो हनुमान है ना, वो थोड़ी देर में मेघनाथ बन जाता है ना, थोड़ी देर में हनुमान जी कुंभकर्ण बन जाते हैं, है ना। आपका बेटा, आपका आपके घर में साथी जो है, आपका पति या आपकी पत्नी, थोड़ी देर में देखो तो अभी सीता है, थोड़ी देर में शूर्पणखा बन जाती है ना, एकदम रूप बदलता है, नहीं बदलता है? प्रैक्टिकली बदलता है, नहीं बदलता है? तो ये ड्रामा देखना होता है ना, साक्षियों को देखना पड़ता है ना, क्या समझे? पति भी बनता है ना, मेघनाथ बन जाता है कभी, कभी कुंभकर्ण बन जाता है, कभी कुछ, कभी रावण का भाई बन जाता है, कभी रावण का बेटा बन जाता है ना, कभी राम का भी, कभी राम का भाई लक्ष्मण बन जाता है, कभी फिर देखो तो भरत बन जाता है, कभी तो देखो अलग अलग रूप बन जाते हैं ना। तो मतलब ये जो है प्रैक्टिकली हमारे घर में रोज होता है ना, और हमें साक्षी होकर देखना, उसको एक्सेप्ट करना। अभी हम इसकी गहराई में जाते हैं, तो जितना एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते जाओगे, मन और बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे बुद्धि कोई ऊपर से पवित्रता आती नहीं है। कई बार हम बैठते ना, योग करते हैं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा पवित्रता का सागर है, मुझ में पवित्रता आ रही है ना। पवित्रता ऐसी आती है क्या? बाबा शांति का सागर है, मुझ में शांति आ रही है, शांति ऐसे आएगी क्या? ऐसी शांति नहीं आती है। ये रॉ मेटीरियल जो है ना, एबीसीडी है, ज्ञान बाबा की मुरली रॉ मेटीरियल है। मुझे इससे पवित्रता बनानी है, पवित्रता खींचनी है ना, या ये भी कह सकते पवित्रता खींचनी है। बाबा पवित्रता का सागर, अपने आप नहीं आएगी, पवित्रता मुझे खींचनी है, शांति मुझे खींचनी है ना। तो जितना मैं इसको अनुभव करूं, एबीसीडी को, ज्ञान को, बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करूं, उतना मेरे अंदर क्या, मन बुद्धि पवित्र होती जाए। पवित्र माना, पवित्रता की परिभाषा क्या है? पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के दूसरे के सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। सत्य स्वरूप मेरा क्या है? मैं आत्मा हूं। सामने वाला कौन है? वो भी आत्मा है। कोई भी हो सकता है, पति, पत्नी, बच्चा, दोस्त, भाई, बहन, वो भी आत्मा है। और सत्य स्वरूप में व्यवहार करें, ठीक है, ये है पवित्रता। और पवित्रता में, और इसकी पवित्रता गुह्यता क्या है? लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव का अंश ना हो। आज ब्राह्मणों में पवित्रता, अपवित्रता, देवान वाली वो वाली अपवित्रता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कहां फंसे हुए? लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव में फंसे, ये भी अपवित्रता है। किसी से लगाव हो जाना भी अपवित्रता है। उसी की बार बार याद आए, उसी की तरफ बुद्धि जाए, बार बार उसी को SMS भेजें, उसी पे WhatsApp भेजें, है ना, उसी को हम ऐसे करें, उससे बार बार फोन करें, यह अपवित्रता है। किसी के प्रति झुकाव हो जाना, किसी की बात सुनने की इच्छा होना, यह भी अपवित्रता है। प्रभाव, किसी के प्रभाव में आ जाना, किसी देहधारी के प्रभाव में, चाहे वो बीके हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा है भाई है बहनों, उसके प्रभाव, बाबा के प्रभाव में रहना अच्छी बात है, किसी भी देहधारी के प्रभाव में आना, लौकिक या अलौकिक, वो भी अपवित्रता है। किसी से टकराव होना, ये भी अपवित्रता है। जब याद करने बैठोगे, लगाव वाला याद आएगा, झुकाव वाला याद आएगा, प्रभाव वाला याद आएगा, टकराव वाला याद आएगा, क्योंकि वो दिखाई देता है, वो चित्र वाला है। और जो जिसके जिसको मुझे याद करना है, वो कौन है? वो विचित्र है, राइट। तो पवित्रता है क्या? पवित्रता है अपवित्रता है ना। तो ये ब्राह्मणों को पवित्रता अपनानी है। और एक और ब्राह्मण में अपवित्रता है, वो कौन सी है? क्या, क्यों, कैसे वाली अपवित्रता है। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया, क्या क्यों कैसे, ये वाली अपवित्रता है, ये भी अपवित्रता है। ड्रामा में भगवान को मंजूर है, ड्रामा भगवान का बनाया हुआ है, बाबा का बनाया हुआ है, भगवान को मंजूर है, मैं क्वेश्चन रेज करने वाला क्यों, कौन, ये जो वैध संकल्प चलाना है, ये वैध संकल्प करना भी अपवित्रता है, ठीक है। और जब हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारा बाबा से एक्यूरेट कनेक्शन लगता है, पवित्रता बढ़ी तो और कनेक्शन बेटर हो गया। अब बेटर कनेक्शन हुआ तो क्या हो, शांति आ गई, शांति माना, शांति की परिभाषा क्या है, ना पास्ट का चिंतन ना भविष्य की चिंता, वर्तमान में अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के सत्य भाव से कंबाइंड होकर सोचना, देखना, पढ़ना, बोलना, खाना, सुनना, चलना, कोई भी घर ऑफिस में काम करना और सोना, ये है शांति। अगर मैं आपको सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूं, 90% विचार कहां से आ रहे हैं, पास्ट या भविष्य से आ रहे हैं, और 30% विचार सिर्फ वर्तमान से आ रहे हैं, 10% विचार सिर्फ वर्तमान से आ रहे हैं। तो शांति माना, जब हम बाबा को याद करते हैं, अभी एबीसीडी को रिवाइज रियलाइज करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा, तो क्या होता है, हमारे संकल्प 90% संकल्प खत्म हो जाते हैं, पास्ट भविष्य खत्म, कितने बचे, 3, तो 30 अशांति है, 30 संकल्प चलते हैं एक मिनट में यूजली दुनिया में, 27 खत्म हो गए, 3 बचे, 30 है अशांति और 3 है शांति। अगर एबीसी है तो शांति है, ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला सबसे अच्छा हो रहा है, खाली एबीसी रह गया, आत्मा, बाबा और कनेक्शन, संबंध, तो शांति है, ठीक है, न पास्ट न भविष्य, शांति। जब शांति शब्द बोलो तो ध्यान रहे, पास्ट का संकल्प तो नहीं आ रहा है, भविष्य का तो नहीं आ रहा है, पास्ट माना, शांति माना, ना पास्ट ना भविष्य, सिर्फ वर्तमान में बाबा से कंबाइन हो, और कुछ भी सोचो, कुछ भी देखो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी खाओ, बाबा की याद में खाओ, बाबा से कंबाइंड होके खाओ, बाबा से कंबाइंड होके सुनो, चलना है, पैदल करना है, बाबा से कंबाइंड होके चलो, सोना है, बाबा से कंबाइंड होके सोचो, ये है शांति। अब ऐसी शांति जब आ जाएगी तो रूहानी प्यार आ जाएगा, रूहानी प्यार इससे पैदा होगा। रूहानी प्यार का मतलब क्या है, इस विश्व में हर आत्मा को बिना किसी शर्त के उसके रोल के साथ, उसका रोल, मैंने बताया रोल माना क्या, पार्ट, पार्ट किसका, कौन सा पार्ट है, वो बच्चा, आपका बच्चा या दोस्त या भाई या बहन, सेंटर पे भी हो सकता है, बहनों के साथ भी हो सकता है, कोई कुंभकर्णी हो, सोता ही रहे 4 बजे के बाद, 5 बजे भी सो रहा हो, अमृत वेले भी सो रहा हो, कोई मेघनाथ हो, हमेशा अभिमान की बातें करता हो, है ना, देवान की बातें करता हो, उसको भी आदर के साथ स्वीकार करो, हर आत्मा को उसके पार्ट के साथ आदर के साथ स्वीकार करना और ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर उसकी पालना करना। जैसे बाबा है, बाबा हम सबको स्वीकार करता है, चाहे आतंकवादी भी हो, डकैत भी हो, स्मगलर भी हो, इवन बाबा के बच्चे हैं, भल भल भिन्न भिन्न बाती के हैं, समर्पित बच्चे भी हैं, उसमें भी तरह तरह के हैं, कोई कैसे करता है, कोई कैसे, कोई कितना बाबा को याद करता है, कोई सारा टाइम मोबाइल पे लगा रहता है ना, ऐसे ऐसे चलता रहता है उसका हाथ, है ना, व्हाट्सएप और इधर उधर चलता रहता है, कैसे भी बच्चे हैं, किंतु बाबा सबको पालना देता है, सबको स्वीकार करता है, किंतु फिर ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार रह के पालना करता है, वो जैसा कर्म वैसा फल, बाबा उसमें इंटरफियर नहीं करता फिर, ठीक है, मतलब मैं मर्यादाओं के बाहर जाके उसकी पालना ना करूं, यह है रूहानी प्यार, ठीक है। जब पास्ट भविष्य में जाएंगे तो रूहानी प्यार नहीं कर सकते, सिर्फ वर्तमान में रहने से ही रूहानी प्यार कर सकते हैं, है ना, इससे शांति से प्यार, रूहानी प्यार पैदा होता है। जब रूहानी प्यार पैदा हो गया तो आपने सबको स्वीकार कर लिया, अब आपकी कॉन्शियसनेस इस दुनिया से ऊपर उठ गई, आप बाप के नजदीक पहुंच गए। अगर सबसे रूहानी प्यार नहीं है, विश्व में एक व्यक्ति के प्रति भी टकराव है, एक व्यक्ति को भी आपने स्वीकार नहीं किया आदर के साथ, तो आप इसी दुनिया में अटके हुए हो, बाप के प्यार का अनुभव नहीं कर सकते हो। और जब आप सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे आदर के साथ, तो क्या होगा, हम बाप के प्यार का अनुभव कर पाएंगे, हम बाप के नजदीक पहुंच जाते हैं, ऐसा फील होता है कि जैसे बाबा की गोद में चले गए, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे सिर पे हाथ रखे हुए हैं, है ना, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, ऐसा लगता है बाबा मुझे मिल गया, और बाबा मिल गया तो क्या हुआ, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, कहते हैं ना इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, संतुष्टता आ जाती, इच्छाएं खत्म। यही स्थिति अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे पास है, मैं बाबा के पास हूं, ये अनुभूति है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। तो रूहानी प्यार से अतीन्द्रिय सुख की स्थिति आती है, और अतीन्द्रिय सुख की स्थिति आने से आनंद की स्थिति आती है। आनंद का आनंद का मतलब क्या है, आनंद माना आन माना बंधन, आन माना बंधन, आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन के पार चली जाती है, आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। वो लवलीन स्थिति आत्मा परमात्मा के प्यार में खोई है, देह का भान भी खत्म हो गया, देह का भान है ही नहीं, देह कहां है पता ही नहीं, वो स्थिति इतनी वंडरफुल स्थिति है, वो स्थिति का अनुभव हो जाए तो वो आनंद की स्थिति है। और उसमें हमारे सारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, जो हार्मोन्स है ना हमारे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल गोनेट्स, ये सातों ग्लैंड्स हैं उसी, और जीवन एक संगीत बन जाता है, बिल्कुल हार्मनी हो जाएगी। और जब ऐसी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति और आनंद की अनुभूति हो गई तो आपको सत्य को परखने की शक्ति आ गई, परखने की शक्ति नहीं है, सत्य को परखने की शक्ति, सत्य को, सत्य क्या है झूठ क्या है वो सत्य को हम परख लेते हैं, कि मुझे ये थोड़ी देर का आनंद मिला ना बाबा के साथ का, अब मुझे कोई परवाह नहीं नींद की, मैं 4 बजे अपने आप उठ जाऊंगा, मुझे अलार्म नहीं चाहिए, मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, अगर भूकंप भी आ जाए तो टूटे मकानों के ऊपर से पहुंच जाऊंगा, मुझे अमृत वेला करना है तो मेरा मकान भी टूट जाए तो टूटे मकान के ऊपर बैठ के अमृत वेला कर लूंगा। ये सत्य को परखने की शक्ति, मुझे पता है सुबह अमृत वेले मुझे आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद के लिए मैं कुछ भी करूंगा। दुनिया में ड्रग्स खाते ना, जो ड्रग्स खाते हैं, नशा करते हैं ना, अफीम खाते हैं, हीरोइन खाते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ भी करके वो हीरोइन कहीं से उठा लाएंगे, चोरी करके लाएंगे, घर बेच के, बर्तन बेच के लाएंगे, है ना। ऐसे ही जब हमें ऐसा नशा आ जाता है ना, रियल अनुभूति आ जाती है, उस सत्य को परखने की शक्ति आ गई तो हम अमृत वेला करेंगे, हम मुरली सुनेंगे, सोने के पहले बाबा को लेटर लिखेंगे ही लिखेंगे, कुछ धरती इधर से उधर हो जाए, हम बाबा को चार्ट भरेंगे ही, मुरली पढ़ के सोएंगे ही, 2 मिनट याद करके सोएंगे, कितना भी बिजी क्यों ना हो, नहीं तो आलस में आके सो जाएंगे, है ना। अगर सत्य को परखा नहीं है, बाबा कौन है, बाबा कैसा है, तो ये तक अनुभव नहीं होगा, ठीक है। तो आनंद, अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति से ही हमारे अंदर सत्य को परखने की शक्ति आती है, निर्णय, सत्य को, सत्य निर्णय करने की शक्ति आती है। सत्य निर्णय कर लिया तो बड़ी से बड़ी बात को हम राई बना देते हैं, सार में ले आते हैं, जब बड़ी से बड़ी बात को राई बना देते हैं, मतलब पहाड़ को राई बना देते हैं, तो समेटने की शक्ति आ जाती है। अगर गलत निर्णय कर लिया, सत्य को परखा नहीं, झूठ को राइट परख लिया, गलत निर्णय कर लिया, तो राई पहाड़ बन जाती है, समेटने के बजाय बिखराव हो जाता है, बुद्धि इधर उधर बिखर जाती है, फिर सहन नहीं कर सकते हैं, फिर समा नहीं सकते हैं। अगर हमने सही निर्णय, सही परखा, सही निर्णय किया, तो हम बड़ी से बड़ी बात छोटी कर लेते हैं, छोटी बात करके समेट लेते हैं, और समेट के मतलब बाबा से कनेक्शन लगा लेते हैं, और उस कनेक्शन बना ही रहे, वो अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती रहे, उसके लिए सब कुछ सहन कर लेते हैं। अगर अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव नहीं है तो सहन करना भारी लगता है, होता नहीं है, ठीक है, रोना आता है ना। सहन करना उसके लिए खेल है जिसको अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव है। मैं आपको अपने उसकी बात बताता हूं, कॉलेज की, जब मैं था ना, जब दिल्ली में था, तो मेरे को घर वाले रोकते थे, तुम सेंटर पे नहीं जाओ, तुम ये टाइम तो हमारे मेरे, मैं 5 हॉस्पिटल में जाता था एज ए कंसल्टेंट, मेरे पेशेंट 5 जगह एडमिट होते थे, 5 हॉस्पिटल्स में दिल्ली में। तो वो कहते थे, हमारे मेरे फ्रेंड्स थे ना, वो 7 बजे राउंड लेना शुरू कर देते हॉस्पिटल का, अपने पेशेंट देख के फिर 8 बजे 9 बजे तो जाके क्लिनिक में बैठ जाते थे। मैं घर से 8:30 बजे जाता था, 8:30 पौने 9 जाता था, मैं मुरली सुनने जाता, 7 से 8 मुरली सुनने जाता था। तो मेरे को घर वाले ने मना किया, नहीं नहीं आप भी 7 बजे जाया करो ना, अपना जैसे आपके फ्रेंड्स करते हैं आप भी ऐसे किया करो, तो आपका काम जल्दी फ्री हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया, हमारे वहां पे रोहिणी में स्पोर्ट्स क्लब था, तो मैंने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करने से आपको, मैंने कहा किसी हर्जा तो नहीं, मैंने कहा ये काम भले करो। तो मैंने क्या, स्पोर्ट्स क्लब के कपड़े पहन के मैं स्पोर्ट्स क्लब जाता था। तो 6 बजे घर से निकल गया। पहले 7:45 जाता था, अभी 6 बजे जाना शुरू किया। तो 6 बजे जाना शुरू किया तो स्पोर्ट्स क्लब में पहले आधा घंटा खेल लिया, 7:45 वहां से निकला, मुरली में पहुंच गया, है ना। मुरली में पहुंचा, मुरली सुन के स्पोर्ट्स क्लब से ही फिर सीधा घर आ गया। तो मेरा स्पोर्ट्स क्लब भी हो गया, मुरली भी हो गई। अब घर वालों को पता ही नहीं कि मैं मुरली भी सुन के आता हूं। तो ऐसे मतलब आपको विधि आनी चाहिए, ठीक है। बाबा आपको टच करेगा, कैसे करना है, सब कुछ सहन भी कर लेगा और समा भी लेंगे, है ना। तो सहन करके समा भी लेंगे, है ना, समाना, और समा के जो समा लेगा वो सामना कर सकता, नई प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम रोज आएंगी, वो सामना कर सकेगा, और जो सामना कर सकेगा दूसरों का हेल्प कर पाएगा, जो सामना ही नहीं कर पाएगा दूसरों की हेल्प क्या कर पाएगा, सहयोग ही नहीं कर पाएगा। तो 8 शक्तियां आपस में कनेक्टेड हैं, और जब 8 शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी तो 7 एनर्जी, 7 गुण बराबर हो जाएंगे, नहीं तो ज्ञान ज्यादा पवित्रता कम, पवित्रता कई वो लोगों की पवित्रता ज्यादा शांति कम, थोड़ी कभी पास्ट में कभी भविष्य में, कभी पास्ट में कभी भविष्य, डांस ही करते रहते हैं। किसी शांति आ गई तो रूहानी प्यार कम, किसी एक से थोड़ा लगाव ज्यादा है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो उसके साथ ही रूहानी प्यार नहीं पैदा होता, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी एक को, 2-3 को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रूहानी प्यार नहीं हुआ, अतिंद्र सुख की अनुभूति नहीं, आनंद नहीं हुआ। तो 7 बराबर नहीं, जब 7 बराबर हो जाते तो वो हीलिंग एनर्जी बन जाती। हम ज्ञान का प्रयोग करके अपने आप को हील क्यों नहीं कर पाते, शांति का प्रयोग करके अपने आप को, शांति को कहते हैं हीलिंग एनर्जी है, रूहानी प्यार से हील हो जाती है बीमारियां, अतिंद्र सुख की अनुभूति से हीलिंग होनी चाहिए, आनंद से हीलिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं होती, क्योंकि 7 का इम्बैलेंस है, 7 बराबर नहीं है, इम्बैलेंस। अगर उसको हीलिंग एनर्जी बनाना, 7 बराबर होनी चाहिए, है ना, 7 बराबर होंगी तो वो हीलिंग एनर्जी बन गई, फिर उसको यूज करो, देखो कैसे 1 मिनट में हील हो जाए, कुछ भी बात हो हील कर सकते हो। तो ये मनमना भाव, ये मनमना भाव, ब्राह्मण माना जिसको निरंतर उठते बैठते चलते फिरते ये अंदर बजता रहे, बाबा की मुरली बजती रहे, है ना। संकल्प को इंटेंस गहराई से ये चले जाओ तो भावना बन गई, तो भावना बन गई तो वाइब्रेशन निकलने शुरू हो गए, मतलब तब मेरे अंदर और बाबा के वाइब्रेशन, बाबा के वाइब्रेशन मुझे टच होने लगे, मेरे वाइब्रेशन बाबा को टच होने लगे, क्यों, बाबा भी मेरे बारे सोच रहा है, मैं भी बाबा के बारे सोच रहा हूं, बाबा ने जो कहा मैं उसके बारे में, बाबा को याद करने का मतलब खाली बाबा को ऐसे बैठ के याद करना नहीं है, बाबा की कही हुई बातें याद आना बार बार, ये भी बाबा की याद है, बाबा की कही हुई बातें, बाबा की मुरली की बातें याद आना, ये भी बाबा की याद है ना, ये भी हमें निरंतर चलता रहे, चलता रहे। आपको मुरली का, जैसे मुरली का में ये पता होना चाहिए कि मुरली का ये पेज में, पहले पेज में ऊपर ये है, बीच में ये है, नीचे ये है, कोई लाइन याद आती आपको पेज बुद्धि में आना चाहिए, हाँ ये तो दूसरे पेज में सेकंड लाइन में लिखा हुआ, थर्ड पेज ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, ये तो बीच में लिखा हुआ है, अरे ये ईश्वरीय औलाद तो नीचे की लाइन में लिखा हुआ है ना। अच्छा अच्छा ये बात की बाबा ने, अंदर कोई भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, ये ऊपर की 6ठी 7वीं लाइन में लगता लिखा हुआ है ना, छपा होना चाहिए बुद्धि में ना, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लव लेटर ना, बाबा का लव लेटर पता होता है एक एक लाइन कहां कहां लिखी हुई है, लिखी है ना, नहीं लिखा पता होता, ये यहां पे कहा निरंतर याद करेंगे, वह सर्विस करते करेंगे तो उतना उच्च पद पाएंगे, कहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है, पाप कर्म किया तो बहुत सजा खानी पड़ी, कहां लिखा हुआ है, वो तो नीचे लिखा हुआ है ना, ऐसे ये कहां पर है, वरदान क्या था आज का, स्लोगन क्या था आज का, है ना। तो बुद्धि में दिखाई देना चाहिए, कहां, मन की आंख से दिखाई देना चाहिए, बुद्धि की आंख से दिखाई देना चाहिए। तो ये जब ऐसा निरंतर करेंगे ना, तो ये मनमना भाव का अर्थ मैंने कहा था, वैसे मनमना भाव के अर्थ बहुत सारे होते हैं, मतलब जो रियल स्टार्टिंग जो है ना ब्राह्मणों का, ये होना चाहिए, मेरी बुद्धि में सारा दिन चलता रहे, है ना। तो इस जो बाबा की मुरली है, ये विचार है, एक एक विचार बाबा का, जो बाबा के महावाक्य, एक एक विचार गुह्य है, मतलब बहुत गहराई है, एक एक विचार बहुत राजयुक्त है, मतलब बहुत इसमें सीक्रेट्स हैं, एक एक विचार बहुत रहस्ययुक्त है, और एक एक विचार बहुत अमूल्य है। मैं तो कह रहा हूं एक एक लाइन बाबा कितनी अमूल्य है, इसकी गहराई में जाओ, मतलब तो वो भावना हो गई, भावना, मेरी भावना और बाबा की भावना टच करेगी, है ना, एक दूसरे के वाइब्रेशन बहेंगे, और इसी भावना को लंबा कर दो, अब लंबा करो तो वृत्ति परिवर्तन हो गया, वृत्ति माना अब मेरा एटीट्यूड बदल गया, वृत्ति मतलब एक जैसे बिंदु 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 10 बिंदु लगाए तो भावना बन गई, वही बिंदु 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 करके क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, तो पहला बिंदु कौन सा, आखिरी बिंदु कौन सा पता नहीं, तो सर्कल बन गया, वृत्त बन गया। अब वृत्त का असर क्या हुआ, मेरी बुद्धि में वही बात घूमे जा रही, मन में बातें घूमे, वही मन में बात घूम रही है, तो ये वायुमंडल बन गया। अब ये वायुमंडल क्या हुआ, बहुत वायुमंडल बड़ा होता, जितना मैं बाबा को जाता हूं वायुमंडल और बड़ा होता, मतलब ऑरा, वायुमंडल में ऑरा, आभा मंडल बड़ा हो गया, वो आभा मंडल में कोई आएगा वो भी परिवर्तन हो जाएगा। अब इस वायुमंडल के असर में रहकर मैं काम करूं, जो भी मैं करूंगा मेरा नया इंप्रेशन बन जाएगा, मेरा स्पिरिचुअल इंप्रेशन बन जाएगा, मतलब बाबा के साथ का इंप्रेशन बन जाएगा। मैं जो इसमें इसको और इंटेंस करूंगा तो बाबा का मुझे मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा बाबा मेरे साथ है, और यही मेरा नई आदत बन जाएगी, नया संस्कार बन जाएगा। तो इस तरह से जितना अभ्यास करेंगे तो नया हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, फिर स्मृति में रिकॉर्ड हो गया, नया रिकॉर्ड, नए, अब मैं नई जो देखूंगा, नया अंदर रिकॉर्डिंग होगी ना, अब मुझे दिखाई देगी आत्मा ही दिखाई देगी, पहले देह दिखाई देती अभी आत्मा ही दिखाई देगी, चलते फिरते आत्मा दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, चलते फिरते क्या दिखाई देना शुरू हो जाएगा, हर आत्मा का, हर मनुष्य का शुद्ध स्वरूप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। शुद्ध स्वरूप क्या है, पवित्र बुद्धि पवित्र मन, फरिश्ता स्वरूप दिखाई, भले पवित्र, भले वो फरिश्ता नहीं है अभी, नहीं है, किंतु उसका ओरिजिनल स्वरूप दिखाई देना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ऐसे परिवर्तन आएगा, मनमाना भाव, मध्याजी माना देह और देह भान से ऊपर, मेल फीमेल के भान से ऊपर, है ना। मध्याजी का मतलब क्या है, फरिश्ता, फरिश्ता माना न मेल न फीमेल, इस भान से ऊपर चले जाना ही मध्याजी भाव है, संगम पर यह मध्याजी भाव है, और सत्युग में यही देवता स्वरूप है। लक्ष्मी नारायण में देह का भान नहीं है, देही मान स्थिति है, तो ये मध्याजी भाव है, राइट। तो जितना हम मनमना भाव करेंगे, जितना इस मुरली का मनन माना रिवाइज करेंगे, चिंतन माना गहराई में जाएंगे, मंथन माना उसको बहुत, उसका इतना उसको पीसेंगे, इतना पीसेंगे मतलब इतना उसको अंदर जूस निकालेंगे, बाबा से पूछेंगे बाबा आपने कहा मीठा बनो, मीठे का मतलब क्या है, क्या मीठा बनूं मैं, सामने से लोग तो उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं क्या मीठा बनूं, बोलो क्या मीठा बने, बाबा से पूछो मीठा क्या बने, बाप समान मीठा बनो, बाप समान इसका मतलब निकालो, मंथन करो इस बात का, बाप समान मीठा बनो इसका क्या मतलब है, हैं जी, अब कार्य पर उपकार करें, हाँ ठीक बात है, पर मीठा का मतलब क्या है, एक्सेप्ट करें, और जैसे बाबा ने एक बार कहा था बाबा स्वीट का पहाड़ है तुम भी स्वीटेस्ट बनो, इसका क्या मतलब है, बाबा सबको प्यार करता है। मैंने बाबा से पूछा एक दिन, मैं वॉकिंग करते करते मुरली पढ़ता, मुरली ना मैं तो एक बार मुरली सुनता हूँ अमृत वेले सुबह, मुरली योग के बाद मुरली पढ़ता हूँ, मुरली पढ़ने के बाद फिर मुरली सुनता हूँ क्लास में, और फिर मुरली पूरी होने के बाद वॉकिंग करता हूँ, 8 से 9 तक वॉकिंग करता हूँ। तो मैं बाबा से एक एक बात को फिर मैं चिंतन में जाता हूँ, उसकी मंथन करता हूँ। तो मैंने जैसे बात करते बाबा से पूछा, बाबा मुझे समझ नहीं आया स्वीट का पहाड़ क्या होता है, आप रोज मीठे बच्चे बोलते हो, मीठे मीठे बच्चे बोलते हो, इसका मतलब क्या है, स्वीट का मतलब क्या है। तो बाबा ने कहा बच्चे स्वीट का मतलब है, मीठे का मतलब है सत्व प्रधान, सत्व प्रधान, सत्व माना सातों गुणों में भरपूर बनो, सातों एनर्जी भरपूर बनो, स्वीट का पहाड़ माना बाबा सातों गुणों का सागर है, बाबा सात गुणों का सागर है, तुम सत्व प्रधान बनो, तुम सातों गुणों में भरपूर बनो। तो बाबा आपका मीठे बच्चे क्यों बोलता है, बाबा आपका सत्व प्रधान स्वरूप देखता है, देवता स्वरूप देखता है। बाबा अभी आपका पहले शुरुआत मुरली शुरू करता है मीठे बच्चे, उसका मतलब क्या है, बाबा आपका नादी स्वरूप देखता है परमधाम वाला, वो भी मीठे बच्चे, वो भी सत्व प्रधान स्वरूप है। बाद में मीठे मीठे बच्चे क्यों बनता है मुरली पूरी करने के बाद, क्योंकि बाबा तब देखता है, बाबा बच्चों का नादी और आदि स्वरूप देखता है, बच्चों ने मुरली सुन ली अब उनका मन भी क्या बन गया, सत्व प्रधान बन गया, है ना। तो अनादि और आदि, तो दो स्वरूप देख करके फिर मीठे मीठे बच्चे लास्ट में बोलता है ना। तो ऐसे बाबा का राज बाबा बताएगा ना ये बात। तो फिर अब मीठे का मतलब मैं सारा दिन समझ नहीं आ रहा, मीठा मीठा माना क्या, मीठा माना शुगर बढ़ाऊं क्या, शुगर खाऊं क्या, है ना, या मीठा मीठा बोलूं सबको। बाबा का मतलब जब मेरे अंदर ज्ञान माना समझ, मुझे सत्यता की समझ आ गई, पवित्रता आ गई, मैं सबका सत्य स्वरूप देख रहा हूं, सत्य स्वरूप में व्यवहार कर रहा हूं, शांति आ गई, पास्ट और भविष्य का चिंतन खत्म हो गया, वर्तमान में टिका हुआ हूं, सत्य स्वरूप में टिका हुआ हूं, प्यार माना सबको मैंने स्वीकार कर लिया आदर से, जो जैसा भी है मुझे क्वेश्चन नहीं है वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों करता है, सबको स्वीकार कर लिया। अतिंद्रिय सुख माना बाबा की संतोष आ गया, मुझे कोई इच्छा नहीं है अब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, संतोष है। आनंद माना बाबा की गोद में खोया हुआ हूं, लवलीन हूं, और शक्तियां माना मतलब आ गया, तो ये सातों गुणों में भरपूर हो गया मैं, तो क्या हो गया, मीठा हो गया, नहीं हो गया। अब मेरा व्यवहार कैसा होगा, सबसे मीठा होगा। और बाबा सात गुणों का सागर है, तो बाप समान मीठा माना, बाबा सात गुणों का सागर है तो मैं मास्टर सागर बन जाऊं, तो बाप समान सागर समझा ना, मीठा माना बाप समान मीठा माना, सात गुणों का मास्टर सागर बन जाऊं। ये मंथन करने से अब कार्य में लगाया, मैंने इसको कार्य में लगाया तो रिकॉर्ड हो गया। मुझे समझ से कार्य करना, समझ से व्यवहार करना, कोई भी हो, चाहे मेरा चपरासी हो, चाहे मेरा ड्राइवर हो, चाहे मेरा साथी या कोई भी हो, सर सेंटर में हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, मुझे उससे इस समझ से, मैं भी आत्मा ये भी आत्मा, उसको चपरासी समझ के बात ना करूं, आत्मा समझ के बात करूं, है ना। मेरा मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, उसको मैं आत्मा समझ के बात करूं, बेटा समझ के बात नहीं करूं, बेटी समझ के बात ना करूं, बहन समझ के बात ना करूं, है ना, उसको आत्मा समझ के बात करूं, ठीक है। उसको पवित्रता, उसका पवित्र माना, लगाव झुकाव से बात ना करूं, प्रभाव टकराव में आके बात ना करूं, वो क्या कर रहे हैं उस पर क्या क्यों कैसे ना करूं, तो ये है पवित्र, ये है मीठा व्यवहार, राइट। इसी तरह से बाबा की मूल्यों का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते करते और उसको संकल्पों को भावना में परिवर्तन करो, भावना को लंबा करो तो वृत्ति परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन तो स्मृति में रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हो गया तो स्मृति स्वरूप बन गए, माना मन माना मध्याजी बन गए, मध्याजी माना फरिश्ता बन गए, 100% पॉजिटिव टीम हो गई, और फिर भविष्य में देवता, देवता माना ब्राह्मण बेहद का मन और बुद्धि, फरिश्ता 100% पॉजिटिव टीम, मन पॉजिटिव हो गया, माना उस बाबा बस गया मेरी मन, स्मृति में बाबा, वृत्ति में बाबा, संकल्पों में बाबा, भावना में बाबा आ गया। अब देवता माना दैवी गुणों से भरपूर। अब जब सातों गुणों से भरपूर होकर हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्मों में दैवी गुण दिखाई देंगे, और ऐसे कर्म करते करते हम क्या बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। कैसा रहा? बहुत अच्छा।
एक बात तो मैं कर दूं, क्लियर कर दूं, कई बार क्यों आज सब बच्चे माया में फंसे हुए, बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम्स हो गई है ना। देखो हमें विजुलाइज नहीं करना होता, हम आम को विजुलाइज कर सकते हैं, आम दिखाई देता है, आम में जो मीठापन है, टेस्ट है, उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। इस तार को विजुलाइज कर सकते हैं, दिखाई देती है, इस तार में बिजली बह रही है उसको विजुलाइज कर सकते हैं, हाँ? देह को विजुलाइज कर सकते हैं, क्या हम आत्मा को विजुलाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं। परमात्मा को विजुलाइज कर सकते हैं, शिवलिंग को विजुलाइज कर सकते हैं, दिखाई देता है आंखों से, विजुलाइज मतलब दिखाई देवे, आंखों से दिखाई दे, इन तो आंखों से, है ना। सूक्ष्मतन को विजुलाइज कर सकते हैं, सूक्ष्मतन देखने की चीज है, सूक्ष्मतन देखने की चीज है, बाबा देखने की चीज है, ब्रह्मा बाबा देखने की चीज है, ब्रह्मा बाबा को हम, ब्रह्मा बाबा के शरीर को विजुलाइज कर सकते हैं, देखा हुआ है, फोटो देखा हुआ है ना, किंतु ब्रह्मा बाबा को विजुलाइज कर सकते हैं, क्या शिव बाबा को विजुलाइज कर सकते हैं, परमधाम को विजुलाइज कर सकते हैं, उसको रियलाइज करना है। बाबा ने कभी विजुलाइज वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, बाबा ने कहा रिवाइज और रियलाइज करो, रिवाइज करो, बाबा ने जो कहा उसको रियलाइज करो, चलते फिरते रिवाइज करो और रियलाइज अनुभव करते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं ऊर्जा हूं, ये देह मैटर है और मैं आत्मा, इसको चलाने वाली ऊर्जा हूं, यहां पे, यहां से उसका केंद्र बिंदु है, उससे आत्मा फैल, उससे एनर्जी फैल रही है ना। ऐसे परमात्मा को रियलाइज करो चलते फिरते, मैं उसकी संतान हूं, उस परमात्मा की संतान हूं, उसे विजुलाइज मत करो, मैंने एक सितारा यहां बना दिया, एक सितारा वहां बना दिया, वो विजुलाइज मत, सूक्ष्मतन देखने की चीज नहीं है, सूक्ष्मता अनुभव करने की चीज है, राइट। सूक्ष्म है ना पवित्रता, पवित्रता को तुम विजुलाइज कर सकते हो क्या? शांति को विजुलाइज कर सकते हो क्या? रूहानी प्यार को विजुलाइज कर सकते हो क्या? रूहानी प्यार देखो कैसा कैसा, देखो ऐसे गोल गोल है, ऐसे मोटा मोटा है, ऐसे है क्या?
फील कर सकते हैं ना,
अनुभव कर सकते,
महसूस कर सकते हैं ना,
अनुभव कर सकते हैं ना, हाँ जी
क्या
हैं जी, हाँ सुनो सुनो, परम धाम जो है, देखो एक दो दुनिया है, एक साकार दुनिया है, पांच तत्वों की दुनिया, एक
आप भाई साहब बहुत डिटेल जाएंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे,
कंफ्यूज नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड है ना, आत्माओं की दुनिया है ना, वो निराकार दुनिया है, उसमें कोई आकार नहीं है, तो वो एक अलग तत्व है। किंतु ये जो हमें क्या करने का, हमें चलते फिरते अनुभव करने का है, अपने आप हम रियलाइज, हमें रियल होता जाएगा, रियल जो है हमें सूक्ष्म में पहुंच जाओगे अपने आप, कैसा ब्रह्मा बाबा है, कैसा सूक्ष्म, अपने आप पता लग जाएगा, है ना। शिमला जाने के बाद शिमला अपने आप पता लग जाएगा, शिमला को इमेजिन नहीं करो, शिमला में वो पहाड़ है, वहां एक मंदिर होगा, वहां पर ऐसा होगा, जाने के बाद पता लग जाएगा, आप गाड़ी में बैठ जाओ पहुंच जाओगे, ठीक है जी। हाँ, ये कलर थेरेपी भी गलत है, कलर थेरेपी द्वापर युग में शुरू हुई, कलर थेरेपी द्वापर युग में शुरू हुई, ये कलर सूर्य की लाइट में कलर होते हैं, ठीक है, सूर्य की लाइट में 7 कलर होते हैं, परमात्मा की लाइट में कोई कलर नहीं होते, है ना। तो इसलिए कलर थेरेपी ये गलत है, ये मनुष्यों की उपज है, मन की उपज है ना, ये द्वापर युग में शुरू हुई है, तो ये प्लीज ये बाबा का ज्ञान नहीं है, है ना, ठीक है। इसलिए निज ज्ञान बाबा इसलिए कहते हैं सिर्फ मेरे से सुनो, जो मैं सुनाता हूं वो सुनाओ, और बातें मत सुनो, है ना। इसलिए बाबा की मुरली को जीवन, अगर आप चाहते हो आपकी जीवन की प्रगति हो, आप आगे बढ़े उड़े, तो आप क्या करो, विक्रम विनाश हो तो क्या करो, एक सिर्फ बाबा और बाबा की मुरली, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। हमें द्वापर युग से मिक्स करने की आदत है सभी मनुष्यों को, तो हम सब मिक्स करके सुनाते हैं, है ना। बाबा की मुरली के अलावा कुछ और मत ना सुनो ना सुनाओ, और अपना मनन चिंतन मंथन करो, अपना मनन चिंतन, व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग, क्या बोलते चैटिंग, ट्वीटिंग, क्या बोलते ट्विटर, है ना, ये सब फालतू की चीजें, इनका संग मत करो, अपनी मुरली का संग करो, मुरली को बार बार रिवाइज रियलाइज करो, घोटो और पियो, आप अपना चबाया हुआ आपको पचेगा, दूसरे का चबाया हुआ आपको नहीं पचेगा, है ना, है ना। अपनी घोट तो नशा चढ़े, खूब मुरली को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, उसका मनन चिंतन करो, देखो 10 दिन में कैसी स्थिति बन जाएगी, और सोने के पहले लेटर लिखो बाबा को रोज। हम तो दिल वालों को यही कराते हैं, और दिल वालों को 4 दिन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है।
दिल वाला कौन है?
दिल वाले माना हार्ट पेशेंट, है ना,
हार्ट पेशेंट को
दिल वाले कहते हैं ना, तो 4 दिन में परिवर्तन हो जाता
है। सब कौन है भाई साहब?
बाकी भी सब दिल वाले हैं, क्योंकि दिल वाले अपना दिल बाबा को दे दे तो दिल वाले हैं, ठीक है। नहीं, कौन सी? आप देखो, मैं ये किताब, मैं अमृत वेला किताब है ना, अमृत वेला तो किताब, उसके सेकंड पेज पे पढ़ लेना, ये बात घंटे वाली बात, अमृत वेला किताब आती है ना, सेकंड पेज पे पढ़ लेना, ठीक है, आपको दिखाई देगा, सेकंड पेज ऊपर की ऊपर ऊपर की लाइन है, पहले 3 लाइनों में मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। ओके,
सुनाई नहीं,
बाबा और मुरली, बस बाकी बातों में नहीं जाओ, बाबा और मुरली, बाबा और मुरली, और कुछ बाकी सत्संग है, बाकी सब झूठ संग है, ठीक है। ओके, ओम शांति,
ओम शांति। कहते हैं कहीं क्लास होंगी, अरे भाई आपके पास टाइम ही कहाँ है, आप लोगों के पास ही टाइम कहाँ है, हा?
अभी अभी ओआरसी में आ रहा
हूँ,
अभी मैं ओआरसी में आ रहा हूँ, 25, 26, 27 ना, 25 को रखी है हमने ओआरसी वालों की क्लास, और 26 को टीचर की, दिल्ली की टीचर की क्लास, ठीक है, ट्रेनिंग है, मतलब दिल्ली की टीचर की नहीं, बस पूरा हो गया।
अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
डॉक्टर सतीश गुप्ता को भी बुलाने के लिए कितनी बार फोन करना पड़ा बताइए, फिर भी नहीं, टाइम तो टाइम होता है ना, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात हो गई, सेटिंग हो गया, ड्रामा ने हम सब के लिए बहुत अच्छा सेटिंग कर दिया,
बहुत ABCD, बस इतना ही, ज्यादा नहीं जाओ, ई माना एक्स्ट्रा, एफ माना फोर्स, एक्स्ट्रा में कुछ एक्स्ट्रा, ABCD के अलावा ई एक्स्ट्रा मत करो कुछ भी, और फोर्स से मत करो, ठीक है, जबरदस्ती मत करो, है ना, ABCD बहुत है ना, इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं, हम नर्सरी के बच्चे हैं ना, A4 आत्मा, B4 बाबा, C4 कनेक्शन, D4 ड्रामा, आगे EF में जाना नहीं, ठीक है,
खाली ABCD,
मुरली के अलावा कुछ करो मत, है ना, बस बाबा अपने आप कर देगा काम, अपने आप ही राजा बन जाएंगे, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद, सबको समझ में आया ना क्लास, जिसको समझ में आया हाथ ऊपर करें, अच्छा, बहुत अच्छा, क्या
कंफ्यूजन हो गया
भैया? अभिनंदन।
क्या कंफ्यूजन हो बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो
बोलो बोलो।
कौन सी तकलीफ? पैरों की तकलीफ, पैरों की तकलीफ, मतलब पैरों माना घुटनों की तकलीफ।
और दूसरा भाई बोल रहा है, वो भी साथ में बोल दे, क्या बोलता था एक भाई?
देखो, देखा नहीं उसको अनुभव कैसे करेंगे? आम का आम, मैंने आपको एग्जांपल देखा ना, आम का मिठास आपने देखा है क्या, अनुभव किया? ऐसे ही आत्मा में, आत्मा में हरेक गुण का अनुभव है, पहले का अब सप्रेस हो गया, मर्ज हो गया।
कल तो पहले किया है आपने,
पहले किया है ना, सत्युग चरिता में किया हुआ ना, वो अनुभव मर्ज हो गया है, राइट? और अभी 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 इस जन्म में भी किया हुआ है, बचपन में तो अनुभव किया हुआ है, सिर्फ हमने एक्वायर किया ना माँ बाप से, जल्दी चिंता गुस्सा एक्वायर किया, विकार एक्वायर किए। कल की मुरली में था कि हम सारे विकार कहां से आते हैं? माँ बाप से आते हैं, माँ बाप से सीखते हैं, है ना? तो हमने इसी जन्म में भी था, वो खत्म हो गया, अब वापस उसको इमर्ज करना है, बाबा के ये जो सत्य ज्ञान से वो वापस इमर्ज हो जाएगा। पवित्रता क्या होती है, शांति क्या होती है, देखो आप करके देखो, आपको पास्ट और भविष्य याद ही नहीं आएगा। आप करके देखो, जितना योग बल जमा कर, पास्ट और भविष्य याद ही नहीं आएगा, वर्तमान में ही बाबा से टिके रहेंगे, है ना? ऐसा लगेगा कोई रहम आएगा, कोई गलती करेगा ना उस पर रहम आएगा, उस पर गुस्सा नहीं आएगा, है ना? स्वीकार करने की आदत पड़ेगी। आप देखो कैसे बाबा से अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, कैसे बाबा मुझे प्यार करता है, कैसे मुझे बाबा मुझसे बात करता है। बाबा कहता है, बच्चे तुम आज अमृत वेला देर से आज अभी तक आए नहीं, मैं तुम्हारी वेट कर रहा था, है ना? ऐसे प्यार करेगा आपको ना, रियल में फील होगा बाबा आपसे प्यार करता है, बाबा आपके साथ है, बाबा आपको टच करेगा, है ना? बाबा टच कर, संकल्प में टच करेगा। बाबा में, बाबा की शांति और हमारी शांति में क्या फर्क है? बाबा कभी हमें बाबा कहता है तुम्हारी शांति क्या है, ना पास्ट में जाओ ना भविष्य में जाओ, वर्तमान में अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो, बाबा से कंबाइंड रहो, तभी सोचो बोलो कर्म करो। किंतु बाबा क्या है, ना पास्ट में जाता है ना भविष्य में जाता है, टाइम स्पेस से परे है। बाबा को जो ड्रामा में होना होता है वो टच होता है, वही संकल्प बाबा को आता है, बाबा और संकल्प करता ही नहीं है कोई भी। जो होना अंत में, ये हमारी आखिरी स्थिति हमारी भी ऐसी होगी, आखिरी में ना पास्ट होगा ना भविष्य होगा ना वर्तमान होगा, जो होना होगा हमें वही टच होगा, ये हमारी कर्मातीत स्थिति होगी, बीज रूप स्थिति होगी, राइट? बाप समान स्थिति होगी अंत में। अभी हमारी ये स्थिति है कि हम अटेंशन रख के आत्मिक स्वरूप में रह के परमात्मा से कंबाइंड रह के ना पास्ट को सोचते हैं ना भविष्य को सोचते हैं, राइट? तो अब ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक ये फील करो कि हर समय कोई काम करना है, किसी से बोल रहे हो, पहले बाबा से कंबाइंड होके बोलो, कोई कुछ सुनाना चाहता है, बाबा से कंबाइंड होके सुनो, ऐसे अकेले होके मत सुनो, अकेले सुनोगे तो फिर माया आ जाएगी, बाबा से कंबाइंड होके सुनो। खा रहे हो खाना, बाबा से कंबाइंड होके खाओ, ये तो बुद्धि टेस्ट में चली जाएगी। कल संडे की मुरली थी ना, देवान माना कर्मेंद्रियों का भी त्याग, है ना? स्वाद में चले गए तो ये भी क्या आ गई, माया आ गई ना। सब्जी बहुत अच्छी है आज तो, बहुत बढ़िया गोलगप्पे बहुत अच्छे बने हैं, है ना? आज तो ये रबड़ी बहुत अच्छी, आइसक्रीम खा लो, एक गिलास और ले लो, है ना? ये क्या आ गई, माया आ गई, है ना? ऐसे मतलब ये स्थिति से परे जाने का। तो बाबा बाप समान मना माना, संकल्प भी धीरे धीरे हमारे अपने संकल्प ना रहे, बाबा के संकल्प रहे। एक हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा, मैं कई बार बाबा से पूछता हूँ, बाबा हम लोग इतनी प्लानिंग करते हैं, हमें इतनी प्लानिंग करनी चाहिए क्या? नहीं बच्चे, तुम अपने आप को बाबा को जब हमने तन मन समर्पित कर दिया, तो जैसे हथौड़ा है ना, हथौड़ा, तुम हथौड़ा क्या बोलता है, हथौड़ा यहां पड़ा हुआ है, हथौड़ा कभी कहता है मुझे उठा के यूज करो, मालिक को जब चाहिए यूज कर लो, नहीं यूज करो मत करो, है ना? तो हथौड़ा बन जाओ, ठीक है, जब यूज करना चाहता है यूज करे, नहीं तो मत करे। बाबा की याद में रहो, जब बाबा को यूज करना कर लेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है? ओम शांति,
ओम शांति। तो आज ज्ञान का आप सभी ने ये सब अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई है, कहाँ से आई? चिंतन से, मनन मंथन चिंतन से आई। तो सबसे मुख्य बात ये है ना, बाबा रोज हमें देते हैं मुरली में रॉ मटेरियल, गेहूं, रोटी आपको बनानी पड़ेगी, है ना? उसको महीन बनाना है तो खाने लायक बनेगी, धारणा करने योग्य। तो ये सब बातें आपने सुनी है, अभी सुनी है, समझा? कितना समझा है नंबर वार, कितना याद रहेगा और नंबर वार। पर मुख्य बात, एक बात सीख लेना जरूर, जो भाई साहब ने कहा, मुरली और मंथन, मनन और मंथन सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और आप सभी ने पूछा और भाई साहब ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, जिसको शास्त्र में कहा तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना। कलयुग में अभी बहुत एडवाइजर्स बन गए हैं, अपनी अपनी थियरीज निकाली है, ये करो कलरोपति फलानापति ढिकनापति पता नहीं क्या क्या होता है, और हर व्यक्ति अपना बिना पूछे भी सलाह देगा, आप ये नहीं करो, आप ये नहीं करो, आप ये नहीं करो, आप ये करो, आप ये करो। नहीं, बाबा और मुरली करते जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना?
अपने को बीमारी आए तो कभी किसी डॉक्टर से नहीं पूछो, बाबा से पूछो, बाबा मैं क्या करूं, बाबा बताएगा, बच्चे उस डॉक्टर के पास चलाए, उससे तुम्हारा हिसाब किताब है।
हाँ, ऐसा
बाबा टच करेगा आपकी बुद्धि को, नहीं तो आप ऐसे भटकते कभी इसके पास।
हाँ,
और बाबा ने तो कहेगा बच्चे तुम ऐसे कर लो ठीक हो जाओगे, ऐसे भी ठीक हो जाओगे,
ऐसे थोड़ी बाबा को ऑलमाइटी कहा है, बाबा ऑलमाइटी है और अथॉरिटी है, दोनों है, तो वो जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका समय भी दिया और बहुत विस्तार से प्यार से सब कुछ बताया है, तो सब लोग ये बातों को याद करेंगे। अभी हमारा योग का टाइम है, तो बाबा के शांति स्तंभ के आगे सब जाएंगे, और वहां जाके क्या करेंगे, ये क्लास याद करना, क्लास में क्या आपने सुना वो मेमोराइज याद करना, याद नहीं तो जाके फिर बैठेंगे, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, बैठे रहेंगे, मन को बैठे रहने की आदत है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा ये भी सीख लेना, मन को एक्टिव बना लेना, तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, और बाबा को याद करके फिर शांति स्तंभ के आगे सब जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।